साहित्य में कल्पना और बिंब। प्राचीन युग में साहित्य मीमांसकों का ध्यान कल्पना शक्ति की ओर बहुत कम गया था, जिससे वे काव्य सृजन की प्रक्रिया की यथोचित मीमांसा करने में असफल रहे। एक वर्ग ने यदि कवि की रचना शक्ति को अनुकरण की प्रक्रिया के रूप में ग्रहण करते हुए उसे मिथ्या जगत की मिथ्या अनुकृति प्रस्तुत करने वाला घोषित कर दिया, तो दूसरे वर्ग ने काव्य सृजन की प्रक्रिया को किसी दिव्य शक्ति या दैवी प्रेरणा पर आधारित मानकर कवि को ईश्वर का प्रतिनिधि सिद्ध कर दिया। वस्तुतः ये दोनों ही मत अतिवादी थे तथा वास्तविकता से दूर थे। जबकि काव्य प्रतिभा न तो शुद्ध अनुकृति पर आधारित है, न ही उसमें कोई दैविक शक्ति है। वस्तुतः उसका मूलाधार कवि की उस मानसिक शक्ति में निहित है जो कि अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष में, अतीत को वर्तमान में, स्थूल को सूक्ष्म में और असुंदर को सुंदर में परिणत कर देने की क्षमता से युक्त है। इसी शक्ति को मनोविज्ञान क्षेत्र में कल्पना के नाम से पुकारा जाता है। यह कल्पना न तो शिक्षा दीक्षा एवं पूर्वाभ्यास पर आधारित है और न ही इसके पीछे किसी दैवी शक्ति का हाथ है। वस्तुतः यह मानव की एक प्राकृतिक मानसिक शक्ति है जो कि न्यूनाधिक मात्रा में सभी में होती है, किंतु कवि में यह अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होती है। इसी से वह काव्य रचना में सफल होता है। कल्पना स्वरूप मीमांसा। कल्पना एक मानसिक तत्व है, अतः उसके संबंध में साहित्यिक दृष्टि से विचार करने से पूर्व मनोविज्ञान के आधार पर उसका स्वरूप स्पष्ट कर लेना चाहिए। सुप्रसिद्ध मनोविज्ञान वेत्ता मैकडूगल महोदय ने कल्पना की परिभाषा करते हुए कहा है, अप्रत्यक्ष वस्तुओं से संबंधित चिंतन मनन ही कल्पना है। वुडवर्थ महोदय के विचारानुसार कल्पना एक मानसिक कौशल है। एक अन्य लेखक ने कल्पना की परिभाषा करते हुए लिखा है, कल्पना अपने सरलतम रूप में एक ऐसी शक्ति कही जा सकती है जो कि पूर्व अनुभवों की प्रतिलिपि पुनरुत्थापित करती है। इसी प्रकार जेपी सार्त्र ने अपने कल्पना संबंधी ग्रंथ में इसके चार प्रमुख लक्षण बताए हैं। एक, उसका संबंध चेतना से होता है। दो, उसमें अर्धनिरीक्षण की प्रवृत्ति होती है। तीन, उसका आलंबन शून्य या सत्ताहीन होता है। चार, वह स्वच्छंद होती है। इन परिभाषाओं एवं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि कल्पना एक ऐसी मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के पूर्व अनुभवों के आधार पर प्रत्यक्ष, सूक्ष्म एवं नूतन वस्तुओं या विचारों का आविष्कार, निर्माण या पुनर्निर्माण करती है। अतीत के अनुभव हमारे मन में बिंब रूप में संचित होते हैं। उन्हीं बिंबों का परस्पर जोड़ तोड़ करके वह नए रूपों का निर्माण करती है। यद्यपि कल्पना इच्छा प्रेरित होती है, पर बुद्धि का अंकुश वह बहुत कम स्वीकार करती है। यह दूसरी बात है कि वह अपने पीछे बुद्धि को भी ले चले, इसलिए वह स्वच्छंद कही जा सकती है। जब कल्पना बुद्धि के ही नेतृत्व एवं नियंत्रण में कार्य करने लगती है, तो उसी स्थिति में उसे कल्पना न कहकर चिंतन या मौलिक चिंतन कहा जाता है। जब यही कल्पना भावानुभूतियों से प्रेरित होकर भाषा के माध्यम से कार्य करती है, तो वह उच्च कोटि की साहित्यिक कृतियों के सर्जन में सक्षम होती है। इस प्रकार कल्पना ही वह मूल शक्ति है जो जीवन और जगत के विभिन्न क्षेत्रों में नूतन विचारों, नई वस्तुओं एवं नए क्रियाकलापों का आविष्कार करती है। मनोवैज्ञानिकों ने कल्पना के विभिन्न भेदों पर भेद किए हैं। मूलतः कल्पना के दो भेद माने जाते हैं, एक ग्रहणात्मक रिसेप्टिव और दो सृजनात्मक क्रिएटिव। ग्रहणात्मक कल्पना से हम अप्रत्यक्ष वस्तु के वर्णन के आधार पर उसका बोध प्राप्त करते हैं, जबकि सृजनात्मक कल्पना द्वारा स्वयं नई वस्तु का निर्माण करते हैं। सृजनात्मक कल्पना के भी दो भेद किए गए हैं, व्यवहारोन्मुख प्रैग्मेटिक और दो सौंदर्योन्मुख। इनमें से प्रथम का उपयोग जीवन की व्यवहारिक समस्याओं के समाधान में, नई योजनाओं के निर्माण में एवं नूतन विचारों व सिद्धांतों की स्थापना में होता है, जबकि दूसरी सौंदर्योन्मुख का उपयोग कलाकृतियों के और दिव्य स्वप्नों के निर्माण में होता है। वस्तुतः साहित्य रचयिता का संबंध कल्पना के इसी दूसरे भेद से है। साहित्य में कल्पना शक्ति। साहित्य में कल्पना शक्ति के महत्व की प्रतिष्ठा का श्रेय सबसे अधिक स्वच्छंदतावादी कवियों को है। अंग्रेजी साहित्य में स्वच्छंदतावाद रोमांटिसिज्म के प्रवर्तकों ने परंपरागत अनुकृत सिद्धांत के स्थान पर कल्पना शक्ति की प्रतिष्ठा करते हुए उसे काव्य का सर्वोपरि तत्व घोषित किया था। एस्टी कॉलरिज ने अपने ग्रंथ बायोग्राफिया लिटरेरिया साहित्य की जीवन कथा में कल्पना शक्ति का विस्तृत एवं सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत करते हुए अपना निर्णय इन शब्दों में दिया है। उद्धरण चिन्ह, फाइनली गुड सेंस इज द बॉडी ऑफ पोएटिक जीनियस, फैंसी इट्स ड्रेपरी, मोशन इट्स लाइफ एंड इमेजिनेशन द शॉल that is everywhere and in each and forms all into one graceful and intelligent whole. उद्धरण चिन्ह बंद अर्थात अंततोगत्वा विवेक शक्ति काव्यात्मक प्रतिभा का शरीर है, अनुमान शक्ति उसका वस्त्र, भावावेग उसका जीवन है तथा कल्पना शक्ति ही वह आत्मा है जो कि प्रत्येक काव्य में सर्वत्र होती है तथा जो समस्त तत्वों को एक सुष्ठु एवं बोधगम्य रूप प्रदान कर देती है। उद्धरण चिन्ह बंद। साहित्य में कल्पना शक्ति कई कार्य करती हैं जिन्हें मुख्यतः पांच वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। एक, विषय वस्तु का चेतन स्तर पर प्रस्तुतिकरण। साहित्यकार जिस द्रव्य सामग्री या वस्तु का उपयोग अपनी रचना में करता है वह प्रायः उसके अवचेतन एवं अचेतन मन में विभिन्न अनुभूतियों, संस्कारों, बिंबों एवं धारणाओं के रूप में विद्यमान रहती है, जिसे स्मृति एवं कल्पना की सहायता से चेतन स्तर पर लाया जाता है। पर स्मृतियां वस्तु को मूल रूप में ही पुनरुत्थापित करती हैं, जिससे उसमें रूपगत नवीनता एवं साहित्यिक आकर्षण या आविर्भाव नहीं हो पाता, जबकि कल्पना उसे नूतन एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत करती है। इसलिए कल्पना द्वारा प्रस्तुत विषय ही काव्यात्मक शक्ति से युक्त हो पाता है। दो, कल्पना का दूसरा कार्य द्रव्य या विषय वस्तु का विस्तार करना है। इसी से वस्तु विस्तृत, स्पष्ट एवं अनुभूति गम्य रूप प्राप्त करती है। तीन, नए द्रव्य का आविर्भाव या नई वस्तु की कल्पना करना भी कल्पना शक्ति का तीसरा कार्य है। इसी से साहित्यकार नई घटनाओं एवं नूतन पात्रों की सृष्टि करता है। चार, द्रव्य या विषय वस्तु को अनुभूति गम्य बनाना कल्पना का चौथा कार्य है। कल्पना अपनी वस्तु को बिंबों या सजीव चित्रों के रूप में प्रस्तुत करती है, इससे वे सहज ही पाठक के लिए अनुभूति गम्य हो जाते हैं। पाँच, देश काल एवं व्यक्ति के संबंधों से मुक्ति, यह कल्पना का पांचवा या अंतिम कार्य है। दैनिक जीवन में हम अपने अनुभव दूसरे व्यक्तियों को सुनाते हैं पर फिर भी वे सामान्य श्रोता को आकर्षित नहीं कर पाते। इसका मूल कारण यह है कि वहाँ हमारा अनुभव देश काल की सीमाओं से बंधा हुआ तथा वैयक्तिकता से ग्रस्त होता है, जिससे उसका साधारणीकरण या समाजीकरण नहीं हो पाता, जबकि कला में वस्तु के पूर्ण प्रभाव उत्पादक एवं सम्यक आस्वादन के लिए उसका साधारणीकरण अपेक्षित है। वस्तुतः वस्तु का वैयक्तिक व देश काल की सीमाओं से मुक्त हो जाना ही साधारणीकरण है। कल्पना द्वारा प्रस्तुत सामग्री इन सीमाओं से मुक्त हो जाती है, अतः वह काव्य के साधारणीकरण में योग देती है। भारतीय आचार्यों के अनुसार साधारणीकरण ही काव्य की वह प्रक्रिया है जो काव्यास्वादन के चरम लक्ष्य की पूर्ति का साधन है। इस दृष्टि से कल्पना के इस कार्य का महत्व बहुत अधिक है। कल्पना के इन क्रिया व्यापारों के स्पष्टीकरण के लिए द्रष्टव्य साहित्य विज्ञान का द्वितीय खंड साहित्य के तत्व। कल्पना और बिंब। कल्पना साहित्य में कई प्रकार के कार्य करती है, उनमें एक सूक्ष्म विचार को स्थूल बिंब के रूप में प्रस्तुत करने का भी है। यद्यपि स्वच्छंदतावादी कवियों ने कल्पना को ही सर्वाधिक महत्व दिया था, किंतु परवर्ती युग में कल्पना की अपेक्षा बिंब को अधिक महत्व दिया जाने लगा। 19वीं शती के उत्तरार्ध में अंग्रेजी कविता में अनेक ऐसे आंदोलनों का परिवर्तन हुआ जिन्होंने बिंब विधान को ही कविकर्म का लक्ष्य घोषित करते हुए उसका घोर समर्थन किया। वस्तुतः बिंब विधान के समर्थकों ने एक प्रकार से बिंबवाद को की ही स्थापना करते हुए बिंब की ऐसी विस्तृत एवं व्यापक व्याख्या प्रस्तुत की जिसके अनुसार काव्य का सब कुछ बिंब में ही समाविष्ट हो जाता है। वस्तुतः काव्य शास्त्रियों की यह दुर्बलता सदा से रही है कि वे एक सिद्धांत और उसका इतना विस्तार दे देते हैं कि वह अपनी मूल सीमाओं से भी आगे बढ़कर विकृत हो जाता है। यही अलंकार, रीति, वक्रोक्ति एवं ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादकों ने किया और यही बिंबवादी कर रहे हैं। अस्तु, हमारे विचार में बिंब विधान श्रेयस्कर होते हुए भी बिंबवाद की कट्टर एवं अंध धारणाएँ ग्राह्य नहीं हैं। यहाँ हम बिंब सिद्धांत को उसके सीमित एवं संतुलित रूप में प्रस्तुत करते हुए उसके पक्षों का परिचय देने का प्रयास करेंगे। बिंब क्या है? शाब्दिक दृष्टि से बिंब का अर्थ है प्रतिभा, आकृति, रूप, चित्र आदि। मनोविज्ञान के अनुसार जब हम इंद्रियों के माध्यम से स्थूल जगत की विभिन्न वस्तुओं के संपर्क में आते हैं तो उनका प्रतिबिंब या चित्र हमारे मन में अंकित हो जाता है तथा ये प्रतिबिंब ही समय समय पर हमारी वासना, संस्कार, स्मृति, भावना आदि को जागृत करने का कार्य करते हैं। ये बिंब एक प्रकार से संचित अनुभूतियों के रूप में हमारे अवचेतन मन में सदा विद्यमान रहते हैं, पर समय समय पर स्मृति एवं कल्पना की सहायता से पुनः हमारे चेतन स्तर पर उदित होकर हमें भांति भांति के बोध प्रदान करते हैं। कवि या कलाकार इन्हीं बिंबों को अपनी रचना में प्रस्तुत करता है, जिन्हें ग्रहण करते हुए पाठक या दर्शक सामाजिक विषय का बोध प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में बिंब इंद्रिय अनुभूति का प्रतिबिंब है जो कि मन में अंकित हो जाता है। साहित्यिक दृष्टि से बिंब की अनेक परिभाषाएं की गई हैं। सी डी लेविस महोदय ने बिंब के स्वरूप का सांगोपांग विवेचन करते हुए कहा है, काव्यात्मक बिंब शब्दों के माध्यम से निर्मित एक ऐसा चित्र है जिसका किसी न किसी प्रकार के इंद्रिय गुण से संपर्क हो। बिंब सिद्धांत के परिचय के लिए द्रष्टव्य डॉक्टर नगेंद्र कृत, काव्य बिंब। रॉबिन स्कैल्टन के विचारानुसार बिंब एक ऐसा शब्द है जो कि इंद्रियानुभूति का भाव जागृत करता है। साहित्य की शैल, पृष्ठ 313। इसी प्रकार डॉक्टर नगेंद्र के मत से काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। काव्य बिंब या काव्यगत बिंब के स्वरूप के सम्यक बोध के लिए उसके 5 लक्षणों पर भी विचार किया जा सकता है। काव्य बिंब का पहला लक्षण है चित्रात्मकता। इससे आशय यह है कि जिस प्रकार चित्र में वस्तु का प्रतिबिंब होता है, उसी प्रकार बिंब में भी उसका ऐसा प्रतिबिंब होता है जो पाठक के मन में उस वस्तु की अनुभूति जगा सके। दूसरा लक्षण शब्द रूपात्मकता है, अर्थात काव्य में बिंब चित्र की भांति रेखाओं में नहीं अपितु शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत होता है। तीसरा लक्षण ऐन्द्रिकता है, जिसका अर्थ है कि वह चित्र केवल स्थूल वस्तु का ही प्रतिबिंब न हो अपितु उसका संबंध इंद्रिय बोध से होना चाहिए, या यूं कहिए कि उसमें हमारी इंद्रियों को गुदगुदा देने की क्षमता होनी चाहिए। चौथा लक्षण भावोत्पादकता है, अर्थात काव्य बिंब में भावोत्पादन की क्षमता का होना अनिवार्य है। पांचवें लक्षण के अनुसार उसमें आरोपण का अभाव होना चाहिए, अर्थात वह अलंकारों की भांति मूल वस्तु पर ऊपर से या बाहर से आरोपित नहीं होना चाहिए, उसका वस्तु से सीधा संबंध होना चाहिए, अन्यथा बिंब और अलंकार में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। काव्य बिंब के विभिन्न आचार्यों ने भेदोपभेद भी किए हैं तथा पश्चिम के कुछ विद्वानों ने तो इसे इतना विस्तार दे दिया है कि उससे काव्य की प्रत्येक वस्तु बिंब में ही आ जाती है। हिंदी के विद्वानों ने भी प्रायः इन्हीं का अनुसरण किया है, जो ठीक नहीं। इस संबंध में सबसे अधिक विवाद का विषय यह है कि क्या बिंब चाक्षुष अनुभूति से ही संबद्ध है अथवा अन्य इंद्रियों से भी। पश्चिम के अनेक मीमांसकों ने बिंब का संबंध प्रायः सभी प्रकार की इंद्रियानुभूतियों से माना है, पर हमारे विचार में यह मान्यता बिंब के मूल स्वरूप के प्रतिकूल है। एक ओर वे बिंब को वस्तु का प्रतिरूप या चित्र मानते हैं तो दूसरी ओर उसे श्रवणेन्द्रिय एवं घ्राणेन्द्रिय से ही संबंधित मानते हैं। यह परस्पर विरोधी वस्तु है। गुलाब के फूल का बिंब हमारे मन में अंकित हो सकता है, पर उसकी सुगंध का चित्र कैसे संभव है? गाने वाली का इमेज हमारे मन में उभर सकता है, पर उसके स्वर माधुर्य का प्रभाव बिंब के रूप में कैसे अंकित हो सकता है? वस्तुतः जहाँ चाक्षुष अनुभूतियाँ बिंब रूप में अंकित होती हैं, वहाँ घ्राणेन्द्रियाँ एवं श्रवणेन्द्रियाँ के माध्यम से प्राप्त सूक्ष्म एवं अगोचर गुणों की अनुभूतियाँ हमारे मन में संस्कार रूप में ही विद्यमान रहती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि गंध एवं ध्वनि का बिंब नहीं, संस्कार मात्र अंकित होता है, क्योंकि इनका बिंब या चित्र संभव ही नहीं। ऐसी स्थिति में गंध या ध्वनि के चित्र बिंब की बात करना या तो बिंब शब्द का अनर्थ करना है अथवा भाषा के साथ खिलवाड़ है। यदि बिंब के अंतर्गत हम सभी अनुभूतियों को लेना चाहते हैं तो फिर हमें बिंब की परिभाषा में से चित्र, मूर्त रूप, प्रतिबिंब, मूर्ति आदि शब्दों को निकाल देना चाहिए। परिभाषा की ज्यों का त्यों रखते हुए भी बिंब से सभी अनुभूतियों को संबद्ध कर देना सर्वथा अवैज्ञानिकता एवं असंगत प्रयास है। और यदि बिंब की परिभाषा को बदलते हुए प्रत्येक प्रकार के विचार, भाव या अनुभूति के अगोचर रूप के वर्णन को ही बिंब संज्ञा देने लगे तो फिर कविता में ही क्यों हमारे मुख से उच्चरित प्रत्येक शब्द को बिंब सिद्ध किया जा सकता है। अस्तु, साहित्याचार्यों से हमारा निवेदन है कि वे शास्त्र मीमांसा के समय भावुकता से नहीं बौद्धिकता से काम लें तो अपने विवेचन के साथ अधिक न्याय करेंगे। अतः बिंब के विभिन्न भेदों के अंतर्गत विभिन्न इंद्रियों के आधार पर उन्हें घ्राणपरक, स्वादपरक, ध्वनिपरक, चाक्षुष आदि भेदों में विभाजित करना हमें मान्य नहीं, क्योंकि बिंब अपने सही अर्थ में केवल चाक्षुष होता है, अन्य भेद भ्रामक हैं। इनके अतिरिक्त भी बिंब के अनेक भेद किए गए हैं, यथा सरल बिंब, तात्कालिक बिंब, विश्रृंखलित बिंब, प्रतिमा शून्य बिंब, एब्स्ट्रैक्ट इमेज, रूपकात्मक बिंब, आलंकारिक बिंब, प्रतीकात्मक बिंब आदि। ये भेद न केवल अनावश्यक हैं अपितु कहीं कहीं तो बिंब के मूल रूप के भी प्रतिकूल हैं। यथा प्रतिमा शून्य बिंब लीजिए। यह ऐसा है जैसा कि कोई कहे मधुरता शून्य मिठाई या लावण्य शून्य लवण। जब बिंब का लक्षण ही प्रतिमायुक्त होना है तो उसका एक भेद प्रतिमा शून्य मानना स्वतो व्याघात दोष का उदाहरण प्रस्तुत करना है। इसी प्रकार बिंबों को रूपकों और अलंकारों से संबद्ध करके भी बिंब रूपक अलंकार आदि भिन्न भिन्न सिद्धांतों की सीमाओं के पार्थक्य को मिटाकर उन्हें घुला मिला देने का प्रयास मात्र है। बिंब और अलंकार। यद्यपि कुछ अलंकारों में बिंबात्मकता का एवं कुछ बिंबों में आलंकारिकता का गुण दृष्टिगोचर होता है, फिर भी दोनों एक नहीं है। बिंब योजना का लक्ष्य जहाँ केवल वस्तु के रूप रंग को ही गोचर रूप में प्रस्तुत करते हुए उसको ऐन्द्रिक बोध प्रदान करना होता है, जबकि अलंकार का लक्ष्य प्रस्तुत के साथ अप्रस्तुत का सादृश्य या वैषम्य प्रदर्शित करते हुए बौद्धिक चमत्कार उत्पन्न करना भी होता है। दूसरे बिंब जहाँ केवल प्रस्तुत या उपमेय का ही बोध प्रदान करता है, वहाँ अलंकार में प्रस्तुत या उपमान का भी संयोग होता है। तीसरे बिंब मूलतः स्वभावोक्ति पर आधारित होता है, जबकि अलंकार का आधार अतिशयोक्ति या अत्युक्ति या अत्युक्तिपूर्ण कथन होता है। दूसरे शब्दों में जहाँ बिंब वस्तु के प्रत्यक्ष चित्रण द्वारा प्रभाव उत्पन्न करता है, वहाँ अलंकार अप्रत्यक्ष या अन्य विषय के सहयोग से यह कार्य संपादित करता है। अतः इन दोनों के इस अंतर को ध्यान में रखते हुए दोनों को पृथक सिद्धांतों के रूप में ग्रहण करना उचित होगा। बिंब और प्रतीक। बिंबवादियों ने प्रतीकात्मक बिंब तथा प्रतीकवादियों ने बिंबात्मक प्रतीक जैसे भेदों की कल्पना करके एक दूसरे के क्षेत्र में अनुचित अधिकार करने का प्रयास किया है। वस्तुतः बिंब और प्रतीक में गहरा अंतर है। एक, बिंब में विषय वस्तु का बोध प्रत्यक्ष एवं अविधा में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि प्रतीक के मूल में लक्षणा एवं व्यंजना कार्य करती है। दो, बिंब में शब्दावली सदा एकार्थक होती है, जबकि प्रतीक में शब्दों के कम से कम दो अर्थ होते हैं, जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल में दीपक प्रतीक है जिसके दो अर्थ हैं दिया और जीवन। बिंब का लक्ष्य चित्रात्मकता है, जबकि प्रतीक वक्रता के द्वारा आकर्षण उत्पन्न करता है। अतः बिंब और प्रतीक प्रत्येक स्थिति में भिन्न कोटि के तत्वों पर आधारित सिद्धांत सिद्ध होते हैं। बिंब विधान की प्रक्रिया। डॉक्टर नगेंद्र ने बिंब रचना की प्रक्रिया का विवेचन करते हुए उसके तीन सोपान निर्धारित किए हैं। एक, अनुभूति का निर्व्यक्तिकरण। दो, साधारणीकरण। और तीन, शब्दार्थ के माध्यम से अभिव्यक्ति। इन प्रक्रियाओं द्वारा कवि की सृजन शक्ति का भी पता चलता है। कवि या साहित्यकार किसी भी अनुभूति के व्यवहारिक योग के समय काव्य का सृजन करने में असमर्थ रहता है, क्योंकि उस समय वह अनुभूति में इतना तल्लीन रहता है कि उससे ऊपर उठकर उसे तटस्थ रूप में नहीं देख पाता। जब आगे चलकर कवि की अनुभूति संस्कार रूप में अवशिष्ट रहती तो उसी स्थिति में वह उसे निर्वैयक्तिक रूप में प्रस्तुत कर पाता है। इस निर्वैयक्तिकरण की ही अगली अवस्था साधारणीकरण है, अर्थात कवि की अनुभूति सबकी अनुभूति बनने की योग्य हो जाती है। तीसरी स्थिति है शब्दार्थ के माध्यम से अभिव्यक्ति। कवि की साधारणीकृत अनुभूति शब्दों में व्यक्त होती है। यद्यपि डॉक्टर नगेंद्र ने इन तीनों स्थितियों का विवेचन अत्यंत मौलिक एवं सूक्ष्म रूप में किया है, पर एक स्थल पर हम उनसे सहमत नहीं हैं। वे लिखते हैं, उद्धरण चिन्ह, लक्षणा के प्रयोग द्वारा रूप रेखाओं में रंग भरना बिंब को पूर्णता प्रदान करता है। उद्धरण चिन्ह बंद। हमारे विचार में हवात वक्रोक्ति एवं प्रतीक योजना पर तो लागू होती है, पर बिंब योजना पर नहीं, क्योंकि बिंब के मूल में स्वभावोक्ति एवं अविधा शक्ति ही कार्य करती है। संभवतः उन्होंने भी पाश्चात्य बिंबवादियों की भांति बिंब को व्यापक अर्थ में ग्रहण कर लिया है, जिसके अनुसार अलंकार वक्रोक्ति प्रतीक आदि सभी बिंब में आ जाते हैं। फिर भी यदि डॉक्टर नगेंद्र बिंब और प्रतीक को भिन्न भिन्न मानते हैं तो हमारा निवेदन है कि वे अपनी उपर्युक्त धारणा पर पुनर्विचार करें। बिंब का काव्यात्मक मूल्य। जिस प्रकार अलंकार वक्रोक्ति प्रतीक आदि का लक्ष्य काव्य में सौंदर्य या आकर्षण उत्पन्न करना है, उसी प्रकार बिंब योजना का भी लक्ष्य यही है। बिंब योजना में मूल वस्तु को ही इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है जिससे वह हमारी कल्पना शक्ति को उत्तेजित करती हुई अनुभूति गम्य हो सके। जहाँ बिंब योजना से इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती, अर्थात न तो वह हमारी कल्पना शक्ति को ही उत्तेजित करती है और न ही भावानुभूति प्रदान करती है, वहाँ वह काव्यात्मक दृष्टि से निरर्थक है। बिंब योजना में यह शक्ति उसी स्थिति में आती है जबकि एक तो वह भावानुभूति से प्रेरित हो तथा दूसरे बिंब अपने आप में पूर्ण हो। भावानुभूति से शून्य बिंब तथा खंडित बिंब काव्य के सौंदर्य में अभिवृद्धि नहीं करते, यथा बिहारी से एक उदाहरण प्रस्तुत है। इत आवती चली जात उत चली छसात खात चली हिंडोरे सह रही जगी उसासनुसात। यहाँ विरहिणी नायिका का सांगोपांग चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसमें स्थूल दृष्टि से बिंब के सही बाह्य लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं, पर फिर भी अनुभूति की यथार्थता के अभाव में वह काव्यात्मक दृष्टि से आकर्षण शून्य है। दूसरी ओर यहाँ सफल बिंब योजना के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। क भाँ ऊँचे पाँचरु उल्टी मौरी मौरी मुह मोरी नीठ नीठ भीतर गई दीठ दीठ सोजोरी। ख बैंद भाल तमोल मुख शीश सिलसिले बार दृग आंजे राजे खरी बेई सहज सिंगार। यहाँ दोनों दोहों में अनुभूतिपूर्ण बिंब योजना उपलब्ध होती है। वस्तुतः कल्पना यदि बिंब की उत्पादिका है तो अनुभूति उसकी संगनी है। इसके अभाव में बिंब आकर्षण शून्य सिद्ध होता है। इसलिए कॉलरिज ने लिखा था, इमेजेस हाउ एवर ब्यूटिफुल डू नॉट ऑफ देम सेल्व्स करेक्टराइज द पोएट, दे बिकम प्रूफ्स ऑफ ओरिजिनल जीनियस ओनली एज फार एज दे आर मॉडिफाइड बाई प्रीडोमिनेंट पैशन और बाई एसोसिएटेड थॉट्स और इमेजेस अवेकेंड बाई द पैशन। उद्धरण चिन्ह बंद। अर्थात बिंब चाहे कितने ही सुंदर क्यों न हो, वे अपने आप में कवित्व के प्रमाण नहीं हैं। वे कवि की मौलिक प्रतिभा को उसी सीमा तक प्रमाणित करते हैं जहाँ तक वे पूर्ववर्ती भावावेश के प्रावल से अनुप्राणित होते हैं या फिर तत्संबंधित किसी विशेष विचार या भावावेग की अनुभूति को जगाते हैं। ऐसी स्थिति में बिंब को काव्य में भावानुभूति व्यंजना का एक माध्यम या साधन ही मानना उचित होगा। साध्य से परे साधन का कोई स्वतंत्र महत्व स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर भी दुर्भाग्य से यदि आधुनिक कवि शुष्क विचारों या दुरारूढ़ कल्पना के बल पर अनुभूति शून्य बिंबों के निर्माण में लगे हुए हैं, उनके बिंब काव्यानुभूति में सहयोग देने के स्थान पर बाधक सिद्ध हो रहे हैं, फिर भी वे अपनी बिंब योजना का गुणगान करते नहीं अगाते। वस्तुतः बिंब योजना की सफलता इसी में है कि वह स्व प्रेरित एवं अनुभूति से अनुप्राणित हो। काव्य वस्तु में वह ऊपर से आरोपित या चेष्टापूर्वक कल्पित प्रतीत न हो, अन्यथा वह काव्यत्व के लिए घातक सिद्ध होती है। ऐसे ही विश्वविधान की भर्त्सना करते हुए श्री सी सी डी लेविस ने उसे खंडित मृत एवं निरर्थक विशेषणों से भूषित किया है। बिंब विधान और रस सिद्धांत। यदि बिंब विधान पर रस सैद्धांतिक दृष्टि से विचार किया जाए तो वह काव्य में स्थायी भाव के चित्रण का ही माध्यम सिद्ध होता है। स्थायी भाव एवं अन्य भावों का काव्य में उल्लेख एक प्रकार का काव्य दोष माना जाता है, क्योंकि भावों का उल्लेख अनुभूति में सहायक सिद्ध नहीं होता। उदाहरण के लिए यदि हम कह रहे हों कि परशुराम को लक्ष्मण पर क्रोध आ गया तो यहाँ क्रोध की कोई अनुभूति नहीं होती। अतः क्रोध को अनुभव एवं संचारी भावों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। यदि बिंब सिद्धांत की शब्दावली में इसी बात को दोहराया जाए तो कहा जा सकता है कि काव्य में क्रोध का नामोल्लेख नहीं, अभी तो उसका बिंब विधान होना चाहिए। वस्तुतः स्थायी भाव एवं रस के विभिन्न अवयव आलंबन आश्रय उद्दीपन अनुभाव संचारी आदि नाटक में तो साकार रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, पर काव्य में तो उसका बिंब ही प्रस्तुत किया जा सकता है। बिहारी ने नायिका के हावों एवं अनुभावों को बिंब रूप में ही प्रस्तुत किया है। इस क्षेत्र में यही उनकी सफलता का रहस्य है। रस और बिंब के पारस्परिक संबंध की घनिष्ठता का दूसरा प्रमाण यह है कि स्वयं बिंबवादी आचार्यों ने भी बिंब को भावों के अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में स्वीकार किया है। कल्पना सिद्धांत के घोर समर्थक कॉलरिज से लेकर काव्यात्मक बिंब के व्याख्याता सी डी लेविस तक विभिन्न आचार्यों ने बिंब और भाव के सहयोग को आवश्यक माना है। लेविस महोदय के अनुसार तो काव्यात्मक बिंब का लक्षण ही यही है कि वह भावावेग से अनुप्राणित हो। हिंदी में रस सिद्धांत के समर्थक आचार्य डॉक्टर नगेंद्र द्वारा ही बिंब सिद्धांत की सर्वप्रथम सांगोपांग विवेचना होना भी यह सिद्ध करता है कि ये सिद्धांत परस्पर विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसी स्थिति में क्या हम कह सकते हैं कि काव्य में भावानुभूति का बिंब रूप में प्रस्तुतिकरण ही रस निष्पत्ति का आधार है? शायद यह प्रश्न उन व्यक्तियों को जो कि या तो भरत दंडी या भामह की बात को ही वेद वाक्य मानते हैं या फिर पश्चिम के किसी भी सिद्धांत की तुलना में भारत के प्रत्येक विचार को अग्राह्य एवं निंदनीय मानते हैं, अरुचिकर प्रतीत होगा। फिर भी यदि हम अपने चिंतन को संतुलित एवं सर्वांगीण रूप देना चाहते हैं तो इस प्रकार के प्रश्नों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस प्रकार साहित्य में कल्पना और बिंब शीर्षक यह निबंध यहीं पर समाप्त होता है।